फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जामित यानी गैर जीरो चीज़ों का क्या हुक्म है। अभी तक हमने जो चीज़ें देखी ना, ये जिंदा है ना, जानवर वगैरह। जामित वो जो स्टिल है जी, नॉन लिविंग कह लीजिए, बिल्कुल। मसलन आप देखिए, ज़मीन और पत्थर वगैरह सब पाक है, मट्टी पाक होती है। और इसी तरह की चीज़ें अपनी असल के एतबार से जिस पे कोई वजह ना आ गई हो, मसलन पत्थर है, घास है, सब्ज़ा है, ये सब पाक होती हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर पाक खून कौन सा है, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या ब्लड सही है। देखिए कई कौमें ऐसी हैं जो खून पीती भी हैं। एक तो हमारे यहाँ खून पीते हैं ना बच्चे और ससुराल, तो ये फिक्र में नहीं आता, ये मामलात में पड़ेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और खून पी जाऊंगी है, तो ये मुहावरे फिर निकाल दीजिए। लेकिन पाक खून दो हैं। नंबर एक, आप देखिए वो खून जो ज़िबह करने के बाद जानवर से निकले। आप ईद कुर्बान पे ये देखते होंगे कि स्लॉटर करके थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है, सारा खून निकल जाता है गंदा, लेकिन थोड़ा सा बीच में जो बाद में आता है ना, दमम मसफूहा का लफ्ज़ आता है सूरत अलनाम में, ठीक है। बहता हुआ खून वो नापाक है, बट वो खून जो बाद में जिस्म से निकले वो। और दो लफ्ज़ लिख लें, तिली, तिली को क्या कहते हैं, स्प्लीन, जायज़ है। और कलेजी, कलेजी पूरा ब्लड होता है, आपको पता होगा, इट्स जस्ट लाइक क्लॉटेड या कंसनट्रेटेड ब्लड है, ये जायज़ है। आप सबसे पहले खाते ही कुर्बानी के बाद क्या है, कलेजी खाते हैं ना, तो ये दो पाक है, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए कि वैसे जो खून है वो क्या है, खून पीप और कच लहू सब नापाक हैं। अगर ये चीज़ें किसी पाक जानवर की हैं तो थोड़ी सी मिकदार हो तो इट्स ओके, ज़्यादा होगा तो नापाक होगा। हलाल जानवर का वो हिस्सा जो इसकी ज़िंदगी में काट लिया, मसलन बकरे की टांग काट ली, जिंदा बकरे की, तो वो नापाक होगी, स्लॉटर करना लाजमी है। फिर इसी तरह अलका, जमा हुआ खून नापाक है, मुदगा लोथड़ा भी नापाक है। ये ज़्यादा डिटेल्स से मेरे हिसाब में, लेकिन सिर्फ ये देख लीजिए मैं इन सारी चीज़ों को आज पढ़ाते हुए क्या सोचती हूँ, अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह का वादा सच्चा है ना। आज जो लोग कहते हैं ना कि नहीं कुरान सुन्नत से सारी बातें नहीं समझ आती, नबी सल्लम के बाद कुछ और लोगों को कुछ करना पड़ा और करते हैं, तो याद रखिए इस कुरान और सुन्नत दो ऐसे चश्मे हैं, इनसे सैराब हो जाएंगे इंशाल्लाह, आपकी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें भी बचती जाएंगी और आपको किसी से ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन ये है, छोड़िए नजासत क्या है क्या नहीं वो पता लग गई, साफ़ कैसे करें। अब आप कहेंगे बस टूटी के नीचे रख दें और ऊपर से बहाना शुरू कर दें पानी, तो नजासत से पाकी हासिल करने के तरीके क्या हैं, चार तरीके आपके सामने। नंबर एक, नजासत को पाक पानी से धो डालें, जैसे हम करते हैं, पानी है तो धो लीजिए। नंबर दो, अगर निचोड़ना मुमकिन हो तो धोने वाले पानी से बाहर निचोड़ा जाए, यानी निचोड़ सकते हैं, कोई गंदगी ऐसी लग गई तो जो पानी जिससे आपने धोया था ना, आप उसको जाके निचोड़ भी लीजिए, मतलब उसका जितना असर निकल जाए, धोना ही मुमकिन नहीं उस चीज़ को। आपके किसी ऐसे कपड़े पे या बैग पे लग गई गंदगी, धोएंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो खुरच लीजिए। तीसरी चीज़ खुरचना, स्क्रैच कर लीजिए उसको। और कुत्ते की नजासत अगर लगे तो 7 बार पानी से धोएं और 8वीं बार साबुन या मिट्टी से, मिट्टी के साथ भी धो सकते हैं, यदि कुत्ता बर्तन में मुंह डाल ले तो उस बर्तन को 7 दफ़ा धोना होता है। अब आपके 7 क्यों, 2 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, तो जवाब क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़मीन पर पड़ी नजासत अगर बहने वाली है तो पाकी कैसे हासिल की जाए। मसलन देखिए पेशाब, तो उस पर यानी कोई आया और उसने ऐसी जगह पे पेशाब कर दिया जहाँ नीचे मिट्टी थी, तो क्या करेंगे, उस पर इतना पानी बहा दें, नंबर एक रंग ख़त्म हो जाए पेशाब का और बू आनी ख़त्म हो जाए, सही मुस्लिम की रिवायत 661। फिर नेक्स्ट है कि ज़मीन पर पड़ी नजासत अगर बहने वाली है तो पाकी कैसे हासिल की जाए, तो उसके लिए क्या जवाब है कि मसलन गंदगी है, पखाना है बाहर गलियों में, जंगलों में, कहीं गए तो उसको क्या करना होता है कि उसके असर को ख़त्म करें, या तो उस पर मिट्टी डाल दें, उसको डम कर दें, या फिर ऊपर कोई और चीज़ डाल के उसको इस तरह स्क्रम्बल कर दिया जाए कि उसके असर से ज़्यादा मिट्टी आ जाए। मिट्टी में अल्लाह सुबहाना तआला ने बहुत ज़्यादा पाकी की चीज़ें रखी हैं। फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन क्या है, अगर ज़मीन पर पड़ी नजासत वजूद रखती है तो पाकी कैसे, यानी नज़र आ रही है जगह तो तो उस चीज़ को वहाँ से हटा दीजिए, किसी भी तरीके से उसको वहाँ से अलग कर दें। और ये भी याद रखिए कि बाज़ दफ़ा कर सकता है बंदा, बाज़ जगह नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल उसको हटाना होगा। अगर निजास्त का दूर करना बग़ैर पानी के नामुमकिन हो, फिर क्या करें? पानी डालना ही पड़ेगा, तो फिर क्या करें? पानी से धोएं, चाहे चीज़ ख़राब भी होती है तो हो जाए। ये मुस्लिम की रिवायत है 675। फिर निजास्त की जगह भूल गए, बच्चे ने पेशाब किया भूल गए, या कोई ऐसी सिक्रीशन जिस्म की लग गई किसी बिस्तर पे, कोई ऐसी जगह पे, तो क्या किया जाए? फिर इसका जवाब क्या है कि अगर निजास्त की जगह भूल जाए, कहाँ गंदगी थी वो नहीं समझ आ रही, तो कम अज़ कम इतना साइडों से और धो दीजिए जहाँ तक यकीन आ जाए कि ये भी हिस्सा, इस पे कोई छींटे पड़े होंगे, कोई ऐसी गंदगी लगी होगी। फिर उसके बाद क्या नियत शर्त है? आप किसी चीज़ को पाक कर रहे हैं तो क्या नियत करेंगे उसके लिए कि करेंगे? नहीं, शर्त लाजिम नहीं है। मसलन आप देखिए कि बाहर कोई जगह पे गंदगी थी, बारिश हो गई, तो बारिश से सारी निजासत दूर हो गई, तो वो चीज़ फिर जिस पे निजासत लगी थी, बर्तन था, कोई गमला था, कोई पॉट रखा हुआ था, तो वो पाक होगा। निजासत को छू लें तो क्या होता है? ये बहुत अहम सवाल है। इस पे एक इंशाल्लाह मदर्स विद किड्स का मसला भी बताती हूँ अभी। सवाल क्या है? क्या निजासत को छू लेने से या रोने से वजू टूट जाता है? वजू नहीं टूटता। नजस चीज़ को छूने से या उसके ऊपर पाँव लग गया तो वजू नहीं टूटता। और जिस कपड़े या जिस्म में कहीं लगी हो उसे दूर करना ज़रूरी होता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 668। यानी सिर्फ छूने से या टच करने से नहीं, जैसे अब लोग सवाल करते हैं कुत्ता गुजरते हुए टच कर गया, अगर उसकी फर उसके बाल आपको टच कर गए इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, कुत्ता अगर मुंह डालकर लिक करे आपके कपड़ों को, चाटने लगे, तो फिर वो नापाक हो जाएगा। अब जहाँ मैंने जो सवाल किया है, और ख़ुद इसमें नहीं लिखा लेकिन मदर विद किड्स, बहुत सारी माएँ ये सवाल करती हैं, हम बावजू होती हैं तो हम अपने बच्चे को कैसे पाक करें? आगे वज़ू का इशू आ रहा है, उसमें इंशाल्लाह इसका जवाब मिलेगा कि वज़ू टूटता कैसे, बच्चे को साफ़ करने से या पैम्पर चेंज करने से वज़ू टूटता है कि नहीं, वो इंशाल्लाह ताला हम उसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हवा खारिज होने से इस्तंजा वाजिब होता है? सम टाइम इंसान के जिस्म से गैस पास होती है, तो क्या उसके बाद पानी इस्तेमाल करना लाजमी है? तो हवा खारिज होने से इस्तंजा वाजिब नहीं होता, क्योंकि हवा पाक है। इस पर वुजू उस वक्त वाजिब है जब नमाज का इरादा, यानी आम तौर पे फिर आप हवा खारिज होने से नापाक नहीं होते। क्या सोकर उठने के बाद इस्तंजा लाजमी है? लाजमी नहीं है, जब नमाज पढ़नी होगी उसी वक्त वुजू करेंगे। अब बहुत ही अहम इशू है टॉयलेट यूज़ करना, यानी कज़ाए हाजत। इसके लिए कुरान में जो लफ्ज़ है वो गायत आया है। गायत, गायत कहते हैं गाता से गहरी जगह। अरब लोग आज भी देहातों में कुछ जगह ऐसा होता है, इसी तरह से ज़मीन में गड्ढे खोदते थे और उसको कज़ाए हाजत के लिए इस्तेमाल करते थे, फिर पानी डालते थे, उसी से लफ्ज़ फिर गायत निकला। सवाल पैदा होता है, इंसान को नापाकी कैसे लाहक होती है, यानी किसको कहेंगे नापाकी? तो दो हिस्से, अल्लाह ने हर इंसान के जिस्म में दो पार्ट्स, जिसको हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, आगे का हिस्सा जहाँ से अमूमन यूरिनेट होता है, और पीछे का हिस्सा जहाँ से इंसान पखाना करता है या स्टोल पास होता है। इन दोनों रास्तों से पाकी करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? कि आगे या पीछे के रास्ते से जो गंदगी खारिज होती है, इसकी वजह से नापाकी आती है, यानी पेशाब, पखाना और गैस पास होना। और गैस का इशू हमने आगे पढ़ लिया। सवाल पैदा होता है, आगे और पीछे के रास्ते खारिज होने वाली गंदगी साफ़ कैसे की जाए? नंबर एक, इस तरीके को इस्तंजा कहते हैं। यानी इस्तंजा क्या है? जिस्म से आगे या पीछे से कोई भी चीज़ निकले, और ऑफ कोर्स दो ही चीज़ें मोस्टली इसमें हम देखते हैं, इसको साफ़ करने को इस्तंजा कहते हैं। दूसरा तरीका, के ढेले, मट्टी के ढेले या कागज़, आज जिसको आप टॉयलेट पेपर कहते हैं इसको भी समझ लीजिएगा, इसको एक ख़ास तरीके के साथ, सात ढेले लेकर या तीन ढेले, जिससे गंदगी का असर ख़त्म हो। मतलब आप किसी ऐसी जगह पे हैं, पानी है ही नहीं है, क्या करेंगे? फिर आप सहाबा कराम या अरब लोग तो मिट्टी से साफ़ करते थे। अब आज का सवाल आपका इसमें जो हो सकता है वो, कहीं गए पानी नहीं है, पहली बात है तैयारी करके जाएं। अक्सर मैं साथियों को यही मशवरा देती हूँ, आप तो उसकी कई फॉर्म्स भी बन गई, छोटा सा आप जिपर बैग रखिए, सैंडविच बैग जो बच्चों के पास आपके घरों में होते हैं, दो तीन पर्स में डाल दीजिए, उसका वजन भी नहीं है। कहीं पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने गए, कहीं भी गए, सिंक से उसको भर के ऊपर से पूरा जिपर बंद करके कोना खुला रखें, जब आप यूज़ करेंगे बिल्कुल यकीन करें वो एक लोटा होगा, यूज़ करें उसको फेंक दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन डू इट। ये भी नहीं था, टॉयलेट पेपर लीजिए थोड़ा सारा, उसको पानी में डिप करके ले जाएं, पहले खुश्क से साफ कर लें अपने आप को, एंड में उसको दो तीन दफ़ा करके, तो इंशाल्लाह यानी जब आपको खुद फीलिंग आए। और आखिरी इंतहाई सूरत ये भी है कि अगर पानी है ही नहीं तो फिर टॉयलेट पेपर को इतनी अच्छी तरह से यूज़ करें कि जो नजस या गंदगी या जो लिक्विडेशन थी वो ख़त्म हो जाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको भी कबूल करेगा। सफ़रों में 8-8, 10-10 दिन सहाबा रहते थे, महीनों के सफ़र थे, कहाँ पानी होगा। तो वो फिर इसी तरह यहाँ से देखिए कि हर कुदरती चीज़ का इलाज मौजूद है, जो बेसिक्स अल्लाह ने ज़िंदगी में दिए हैं उसके लिए ज़रूरी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस्तंजा कब वाजिब होता है, यानी मिट्टी के ढेलों से या पानी से खुद को साफ करना कब वाजिब है। तो वही सवाल जवाब है कि आगे और पीछे के रास्ते से निकले, हवा के अलावा कोई भी चीज़ निकले तो फिर उस वक़्त इस्तंजा करना या फिर मिट्टी के ढेलों से उसको करना इस्तेमाल है। सवाल पैदा होता है कि इसकी शर्तें क्या हैं, यानी जब आप इस तरीके से नापाक एक ही चीज़ों को निकालते हैं तो क्या है। पहली बात है कि जिस चीज़ से साफ़ करें वो भी पाक हो, टॉयलेट पेपर साफ़ मटेरियल का बना। अब अगर वो भी पिक की चर्बी या किसी और चीज़ से बन गया या उसके ऊपर खुद कोई गंदगी लगी हुई, तो आपको उससे तहारत हासिल नहीं होगी। फिर नेक्स्ट थिंग क्या है, और ये दलील है सही मुस्लिम 608 नंबर, दारकुतनी 56 है। नंबर दो, वो हलाल हो। तीसरी बात, साफ़ करने की सलाहियत एब्जॉर्बेंट हो। अब बिल्कुल अगर आप वैक्स्ड पेपर के साथ ख़ुद को साफ़ करें तो उस गंदगी नहीं उतरेगी ना, तो वो एब्जॉर्बिंग हो कि वो उस गंदगी को एब्जॉर्ब कर ले। फिर इसके बाद ये कि खाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ ना हो, मसलन खाने के लिए कुछ चीज़, यानी आप खाना मिसाल है आप कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्रैकर्स कुकीज़ ऐसी चीज़ों से ख़ुद को साफ़ करना पड़े, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर इसी तरह 3 पत्थर या इससे ज़्यादा हो, कम से कम 3 हो, और यानी इसीलिए फिर टॉयलेट पेपर भी यूज़ करें तो 3 दफ़ा यूज़ करें। ये सही मुस्लिम 607, 608 और बुखारी 156 में आप ये चीज़ जाके पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है कि कज़ाए हाजत से क्या मुराद है। हम जब भी कज़ाए हाजत करते हैं या वट एवर जो भी, तो वो यही है कि आपने अपनी ज़रूरियात पूरी की और उसके बाद आपने अपने आप को साफ़ कर लिया। नेक्स्ट के कज़ाए हाजत करने वाले के लिए क्या चीज़ें मकरूह हैं, क्या नहीं करना चाहिए टॉयलेट में। यानी आप कह लीजिए कि जब हम अपने ज़रूरत के लिए ऐसी जगहों पे जाते हैं और उसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं, तो वहाँ जाकर गाने सुनने चाहिए और नावल पढ़ने चाहिए और वहाँ बैठकर फ़ोन के मैसेज चेक करने चाहिए। अब ये भी 2-in-1 हो गया। बहुत सारे लोग मल्टीटास्किंग होने के लिए कहते हैं हम वॉशरूम का वक्त भी ज़ाया नहीं करते। आप देख लीजिए ना कि अब ये इशू मैं आज से 2 साल पहले पढ़ा रही होती तो मैंने कभी नहीं था बोलना, तब था ही नहीं। तो वर्क के साथ कैसे इश्यूज आते जा रहे हैं। तो याद रखिए, नंबर एक, ऐसी चीज़ जिसमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह का नाम लिखा हो वो वॉशरूम में या टॉयलेट में नहीं लेके जानी चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है 19 नंबर की। फिर बातें नहीं करनी, कज़ाए हाजत के दौरान बातें गुफ्तगू मना है, अबू दाऊद 15। या फिर मदर्स के साथ माजरत के साथ खुद अपने बच्चे को टॉयलेट सीट पे बैठकर, या वो जिसको पहले दौर में हम क्या कहते थे बच्चों के छोटे पॉटीज पे बिठाती हैं और साफ बातें करती हैं। और ऐसी भी मैंने देखी जो ना समझी में होती हैं बातें, बच्चे को जूं ही चेंज करने लगते हैं हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, वजह क्या कि इसके बगैर वो लेटता नहीं। इट्स नॉट फेयर। देखिए अपने बच्चों को, ये जो अब हमारा पैम्पर सिस्टम आ गया, इट्स नॉट अ रिकमेंडेड सिस्टम, सहूलत हमारी है इसमें, बच्चों की सेंसेस ख़त्म हो जाती हैं। अब ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है, यहाँ ना लें तो बेहतर है, लेकिन देखिए हर वक्त देते क्यों हैं खाने को। पहली माँ ने 6-6 बच्चे पाले, उनके पैम्पर्स होते थे नहीं होते, बच्चे को पहले दिन से जिस तरह ट्रेन करें वो आगे तक वैसे ही रहेगा। और मैं खुद कई बड़े लोगों की इतनी शुस्ता आते देख कर समझती हूँ कि इनकी माँ ने इनको बचपन से इसकी आदत डाली है। बच्चे को फारिग करवाते वक्त ना तो बातें करें, ना अब उनके हाथों में फ़ोन पकड़ाएं। अब तो मुसीबत ये फ़ोनों की आ गई, और सोचा चलो पॉटी पे बैठ के देख रहा है कार्टून तो गुनाह नहीं होगा, और म्यूज़िक देख रहा है, और आप देखिए बच्चा घंटा घंटा फिर बैठेगा करेगा ही नहीं, वो तो इन्वॉल्व। आप खुद देख लें, आप कोई और काम करने लगे, आप साइंस क्या कहती है, आप कहते हमारे जिस्म की सबसे ज़्यादा एनर्जी किस काम पर लगती है, एक्सक्रीशंस पे। बॉडी से वेस्ट को रिमूव कराने में हमारी एनर्जी का, बॉडी में जो ग्लूकोज और चीज़ें आती है इससे ज़्यादा हिस्सा जाता है। फारिग होकर ख़त्म करें काम, ये कोई बैठने की जगह, ये कुछ जगह दिल लगाने की है। तो टॉयलेट्स अब इतने फैंसी जो बना लिए, तो दिल तो लगाना है। अच्छा, मुसीबत अल्लाह माफ़ करे, वॉशरूम कहीं यूज़ करो और स्तंजा जाके किसी दूसरी जगह करो, और पहले जाके पूरा नक्शा समझना पड़ता है। अच्छा, यूरोप वाले ये बातें समझ के मुझे कहेंगे कि ये पता नहीं कहाँ की बातें कर रही हैं, लेकिन यहाँ लोगों को तो बहुत समझ आ रहा है ना। जो डोर खोले हो सकता है वो क्लोजेट हो, दूसरी खोली तो पता चला जी कि उसमें तो ये बाथरूम का नहीं, ये क्या कहते हैं टॉवल्स रखने की जगह है। उतनी देर में चाहे अपना काम खत्म हो जाए। मेक इट ईजी, लाइफ को आसान बनाए। नबी सल्लम ने फरमाया कि बदतरीन जगह वो है बैतुल खला, अच्छी जगह नहीं होती। सिंपल एंड बिल्कुल ऐसा रखे कि वहाँ जाकर थोड़ी देर के बाद दिल ना लगे, और पंखे लगा लिए ऊपर, और अब तो हीट लग गई, और हीट गर्म सीट वाली। अब उठने को किसका दिल करे, आप जाएं, मैं इधर ही अच्छा हूँ, बाहर तो बड़ी ठंड थी, इधर मुझे गर्मी लग रही है। मुसलमान इन चीज़ों के लिए नहीं बना। तीसरी बात, दाएं हाथ से इस्तंजा करना मना, ये तीसरा पॉइंट है उसमें। ये मुस्लिम की रिवायत है 6-1 और 3 नंबर। फिर इसी तरह इमारतों में कज़ाए हाजत के लिए जब जगह बनती है तो क़िबला रुख होना नहीं चाहिए। ये भी एक थोड़ा समझने वाला इशू है, यानी क्या टॉयलेट सीट का रुख क़िबले की तरफ हो सकता है कि नहीं, दिस इज़ अ क्वेश्चन। तो आप सही मुस्लिम की जाकर दो हदीसें पढ़ लें, 609, 611, तो आपको समझ आएगा। खुलासा मैं कर देती हूँ, अल्लाह के नबी एक दफ़ा खुली जगह पे गए तो आपने इख्तमाम किया कि क़िबला रुख पे ना बैठें, लेकिन एक दफ़ा आप किसी दीवार की ओट, यानी जिसको वॉशरूम कह सकते हैं, टॉयलेट या रेस्ट रूम। अच्छा, ये लफ्ज़ रेस्ट रूम भी मैंने अमेरिका में आके पहली दफ़ा सुना, आज भी कभी बाहर जाके मैं बोल दूँ ना, कहते हैं अच्छा आपके घर में रेस्ट रूम है, कितना बड़ा, वो समझते रेस्ट रूम अंदर। आप समझ गए मेरी बात, यानी रेस्ट रूम, जब मैंने फर्स्ट टाइम लफ्ज़ रेस्ट रूम सुना तो मैं समझी काउच लगी होगी साथ खिड़की, लेकिन बाहर वालों के साथ माजरत से कि अमेरिका में वॉशरूम्स को रेस्ट रूम्स कहते हैं, ऐसे ही ना कुछ और कहने लगे हम। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम भी अमेरिकनाइज हो गए। अब देखिए लफ्ज़ रेस्ट रूम से क्या फीलिंग आती है, लेजी, खुजी, सॉफ्ट, फिर जिकुजी आ गई उसमें, फिर उसमें आपने वो चारों तरफ से सोना बात कर दिया, सारे ही नाम याद है ना आपको भी। याद रखिए कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इन चीज़ों पे दिल लगाने में कितना पैसा, और अल्लाह का घर बनाना हो तो कितना पैसा, ये है लगाने और देने का फ़र्क। आज आप करें कॉल किसी अल्लाह के रास्ते की, तो आपको मेरे हले अपने बाथरूम की टूटी जितना पैसा भी देना मुश्किल लगे, और जब हम अल्लाह के नाम पर नहीं, अपने और सहूलतों पे लग्जरियस लाइफ में रहें तो फिर कैसे रहें। देखिए हराम हलाल तो दूर की बात है, एक बंदे के अपने दिल का भी हलाल हराम होता है, सबको जायज़ है, अल्लाह कह रहा है हलाल है, पर मैंने नहीं अपने ऊपर करना। बहरहाल आगे चलिए, और खुली जगह पे जाएं तो किबला रुख नहीं बैठना चाहिए। अब असूल ये है, कहीं टॉयलेट है ही ऐसी जगह पे, अब आप क्या करेंगे, मुश्किल में पड़ेंगे ना, तो बनाते वक्त इख्तमाम कर लीजिए, नहीं कर सकते तो इट्स ओके। फिर इसी तरह सुराखों और शिगाफों में पेशाब करना मना है, क्योंकि अक्सर यहाँ जानवर कीड़े मकोड़े होते हैं। निसाई की रिवायत 34 है। हाँ, हर मकरूह चीज़ याद रखिए ज़रूरत के वक्त अलाउड हो जाती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। कज़ाए हाजत करने वाले के लिए क्या चीज़ें नाजायज़ हैं, यानी ये तो वो जगह की बात थी ना, कि अब जो वहाँ इस चीज़ के लिए गया है तो उसको भी नोट कर लीजिए। नंबर एक, कज़ाए हाजत के ममनुआ मुकामात से बचना चाहिए, यानी जहाँ लिखा हो कि यहाँ आप फारिग नहीं हो सकते, दरख्तों के नीचे, मसलन आम गुजरगा रास्ते, पैसेजेस होते हैं जंगलों में, वॉक करने के ट्रेल बने होते हैं, इसी तरह सायादार और फलदार दरख्तों के नीचे नहीं। इसी तरह घाट, घाट क्या है, जानवर जहाँ से पानी पीते हैं, ये मुस्लिम की रिवायत है 618 नंबर की। फिर इसी तरह खुले मैदान में कज़ाए हाजत करने वाले के लिए किबला रुख होना हराम है, ये मुस्लिम की रिवायत 610। फिर कज़ाए हाजत करने के लिए ज़रूरत से ज़ायद बैठे रहना जायज़ नहीं। यहाँ फिर देखिए कि जब टॉयलेट इस तरह की सीट्स होती थी, जिसको आज भी लोग इंडियन शायद कहते हैं, इंडियन टॉयलेट, तो उसमें एक ख़ास वक्त से ज़्यादा बंदा बैठ भी नहीं सकता था ना, और बिलीव में जब तक वो थी घुटनों के और नीज के प्रॉब्लम नहीं थे। आप देखिए ना, आजकल जो टॉयलेट सीट है वो कितनी रिलैक्सिंग है, आपके डाइनिंग टेबल की सीट और इसमें क्या फ़र्क है। और बिलीव मी, बात कहते हुए भी कराहत आ रही है। मुझे एक तस्वीर भेजी थी किसी ने, किसी मुल्क का रेस्टोरेंट है, पूरा रेस्टोरेंट इज़ बेस्ड ऑन टॉयलेट स्टाइल, कुर्सियाँ जो हैं जिसपे लोग बैठ के खा रहे हैं वो टॉयलेट्स हैं, वल्ला ही, खाने के टेबलें आगे सिंक्स हैं। यानी एकदम जब मैंने तस्वीर देखी, यानी वल्ला ही वल्गरनेस की हद है, जिसके लिए शायद किसी ने मेरा दिल दुखाया, या उनको भी लगा कि मैं आगे बताऊंगी तो आपका भी दुखाऊंगी। फर्स्ट इंस्टेंट में मुझे ये लगा कि ये भी होने लगा है, यानी टॉयलेट विदाउट वॉल्स, ये है वो। बाद में पता चला नो, इट्स नॉट अ टॉयलेट, हाँ जो का ये क्या है कि ये टॉयलेट नहीं है, ये रेस्टोरेंट है। देखिए ये शौकियाँ जो है ना, ये ईमान वाले को नहीं सचती। बहरहाल इससे भी गंदी चीज़ें दुनिया में आज मौजूद हैं जो यहाँ बैठकर कम से कम मैं आपको नहीं बता सकती। दुनिया ने अपनी चीज़ों को मार्केटाइज करने, सोशलाइज करने और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या हद दी है। आप में कोई मेरे से पूछेगा, मैं अकेले में उसको बता सकती हूँ, मैं आपको यहाँ बैठ के नहीं बता सकती। कौन ना जाए उन रेस्टोरेंट्स में जहाँ ये गंदगी दिखाएं वो। तो बहरहाल अल्लाह माफ़ करे आपको मुझे। फिर अगली चीज़ जिससे दौरान इसमें बचना है वो क्या, छींटों से, पेशाब के छींटों से बचना चाहिए। मुस्लिम की रिवायत 677 और इसी तरह से और भी रिवायतें हैं, आप कोई भी लिख लीजिए। क्वेश्चन, क्या जायज़ है टॉयलेट के दौरान यानी ऐसे वक्त में क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए जल्दी से। नंबर एक, बैतुल खला में जाते वक्त पहले बायां पाँव रखिए और निकलते वक्त दायां पाँव रखिए, ठीक है। दलाइल इसके भी हैं लेकिन इतनी कॉमन है कि आपको पहले से पता होगी। फिर टिश्यू पेपर के साथ इस्तंजा करना मना नहीं है, शर्त यह है कि वो आपके जिस्म से गंदगी को साफ कर दे, और बेहतर है कि ताक अदाद में इस्तेमाल करें। जब भी टॉयलेट पेपर यूज़ करें तो ताक में करिए, और फिर अगर पानी ना मिले तो इट्स ओके, इट्स अलाउड। तीसरी बात, बैतुल खला में जाने से पहले दुआ पढ़ें, बुखारी 142 इसकी दलील है। धोने या साफ करने में ताक का अदद का ख्याल रखिए, ये बुखारी 156 है। और ढेले इस्तेमाल करने के बाद पानी से भी इस्तंजा कर लें तो ये बहुत प्यारा है। मुस्लिम की रिवायत 619। कौन सी कौम थी जिसका जिक्र कुरान में है, उनको अल्लाह ने मुतहरीन में कहा, जब अल्लाह के नबी से पूछा गया तो कहा कि इसकी खूबी क्या है कि वो क्या करते हैं, इस्तंजा करने के बाद यानी ढेलों के इस्तेमाल के बाद फिर पानी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, अहले कुबा, जी बिल्कुल, सूरह तौबा में इनका जिक्र है कि ये वो लोग थे कि जो ये सब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये थोड़ा सा एक सम अप हुआ। मिसवाक पे चंद जुमले, मिसवाक क्या है यानी लकड़ी को नरम करके उससे दांतों को साफ करना, ये मिसवाक है, ये नबी सल्लम की सुन्नत है। 244 बुखारी, इसकी अहमियत क्या है, तो बुखारी की दलील आपके सामने है 887 के, आपने फरमाया अगर मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ़ का एहसास ना होता तो मैं हर नमाज के लिए इनको मिसवाक का हुक्म देता। तो मिसवाक ज़ाहिर अच्छी बात है। किन सूरतों में मिसवाक की आपने ताकीद की है यानी कब कब मिसवाक की जा सकती है, मतलब मुराद ये है। तो नंबर एक, नमाज के लिए, मुस्लिम 610। तिलावत कुरान मजीद के लिए भी मिसवाक है, यहाँ आने से पहले भी करके आया करें, 596। तीसरी बात, वुज़ू से पहले, अबू दाऊद 57। अब नमाज और वुज़ू में क्या फ़र्क है, जब वुज़ू किया तब तो मिसवाक की, लेकिन सम टाइम फिर एक वुज़ू से दो नमाजें भी हैं, तो जब नमाज पढ़ने लगें थोड़ी सी उससे पहले मिसवाक कर लीजिए। चौथी चीज़, सुबह उठने के वक्त बेदार होने के बाद, ये मुस्लिम 595 और 593। फिर मुंह का मज़ा बदलने की सूरत में, सम टाइम बंदे का ज़ाहिर बास आने लगती है रोज़े की हालत में, वट एवर, जब भी, तो भी इब्ने माजा 291। और मस्जिद और घर में दाखिले के वक्त मुस्लिम 590। ये है इस्लाम तहारत का दिन। मस्जिद में जाएंगे तो किसको स्मेल ना आए, नंबर एक साथ के नमाजी फरिश्ते, और घर में जाएं तो किसको ना आए, घर वालों को ना आए। यहाँ से अब आप देखिए कि जिनके मुंह से बू आती है और कई किस्म के धुओं की बू आती होगी, फिर वो किस हुक्म में आते हैं। फिर नेक्स्ट है कि कोई ऐसी फजीलत है मिसवाक की कि जिससे हमारा दिल करे कि हम ज़रूर करें मिसवाक, तो अल्लाह के नबी की दो तीन हदीसें नोट कर लीजिए। आपने फरमाया कि मिसवाक मुंह की तहारत और रब की रज़ा है। क्या फरमाया, कि मिसवाक है मुंह पाक हो जाता है, अल्लाह की रज़ा है। ये सही तरगीब 209 नंबर है। फिर फरमाया, बिलाशुबा बंदा जब मिसवाक करता है फिर खड़ा होता है और नमाज़ पढ़ता है तो इसके पीछे फरिश्ता खड़ा हो जाता है और इसकी किरत सुनता है और इसके करीब होकर खड़ा होता है, हत्ता कि वो अपना मुंह इसके मुंह के ऊपर रख देता है, फिर कुरान का जो हिस्सा इसके मुंह से निकलता है फरिश्ते के पास चला जाता है। लिहाजा तुम कुरान के लिए मिसवाक के ज़रिए अपने मुंह को पाक करो। ये सही अल तरगीब की रिवायत 215, यानी फरिश्ते को भी आपका कुरान सुनने में मज़ा आ रहा होता है, बदबू आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सवाल ये कि नबी सल्लम कब करते थे मिसवाक, आपका मामूल क्या था? तो पहली बात है कि आपकी मिसवाक हमेशा आपके सर के करीब होती थी, जैसे अक्सर पढ़े लिखे लोग यहाँ कलम नहीं टूंग लेते, कभी देखा पहले दौर के अंकल्स मुंशी टाइप जो जिन में आता है, तो नबी सल्लम की मिसवाक आपके इधर कान के पीछे होती थी, समझ आ रहा है, जैसे आप उसको होल्ड करें। फिर जब बेदार होते तो मिसवाक शुरू करते, ये सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2111। रात को उठते तो मिसवाक करते, बुखारी 2452। घर में दाखिल होते तो सबसे पहले मिसवाक करते, मुस्लिम 253, अबू दाऊद 51। और मिसवाक के बगैर किसी नमाज के लिए घर से नहीं निकलते थे। मजमा ज़वाइद 99 जिल्द नंबर 2। तो क्या पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मिसवाक करते थे। क्या सुन्नतें क्या हैं? मिसवाक करने की सुन्नतें नंबर 1, किसी भी दरख्त की लकड़ी से कर सकते हैं। पीलू की लकड़ी से मिसवाक मुस्तहब है। पीलू एक दरख्त होता है, येलो सी ज़रा उसकी होती है। ये मुसनद अहमद की रिवायत 420 है, पहली जिल्द में। दाई जानिब से शुरू करें। अब आप देखिए कि आप सपोज़ कीजिए कि ये मिसवाक है, करनी कैसे? कई लोग मिसवाक करने में दांत ही छील लेते हैं अपने। तो आप देखिए दाई तरफ, जैसे हमारे मुंह की ये दाई साइड है, इधर से सुनते थे और इस तरह, ये जो इसे ना इसको यूँ। मैं हैरान होगी जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना, बिलीव मी, किसी डेंटिस्ट को देखिए, आपके जो मसूड़े और दांत है ना, इसका जो ऊपर मसाला, एग्जैक्टली उसकी सूरत में करते थे। यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, राइट साइड से यूँ करते, फिर ये जो आगे का जोफ है ना, इधर यूँ और फिर इधर। ये मिसवाकत सीधी से शुरू करें, बीच में ऐसे, और वो फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि मुंह के अंदर के हिस्से से भी किया जा सकता है। फिर इसी तरह से हस्बे इस्तेतात अपने सारे काम, मसलन वुजू करना, कंघी करना, जूता पहनना, आप दाई तरफ से काम शुरू करते और दूसरे को पसंद करते थे। अबू दाऊद की रिवायत है 41140, यानी ये हदीस का रेफरेंस है। फिर क्या पता चला कि मिसवाक करनी चाहिए? क्या रोज़ेदार मिसवाक कर सकता है? देर इज़ अ साइड क्वेश्चन, यस कर सकता है, और उसके लिए कोई बुरी बात नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत मूसा को अल्लाह ने 30 की बजाय 40 रातें इसलिए रोक लिया कि मूसा ने मिसवाक कर ली। गलत बात है, मिसवाक किसी वक्त भी की जा सकती है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को पसंद किया है। अब सवाल पैदा होता है कि आज हमारा मुस्लिम कल्चर, आप देखिए अगर उसको देखें तो फिर ये चीज़ आज हमारे पास कम दिखती है। तो बहरहाल मिसवाक की आदत डालनी चाहिए, किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जब सुनना समझ के करेंगे। और एक क्वेश्चन जहनों में आता है जो लोग पूछते हैं कि फिर पेस्ट ब्रश की क्या हुक्म है? ये क्वेश्चन है, कोई गुनाह नहीं है। ब्रश अगर आपका वो पिक के बालों से नहीं बना हुआ, ब्रश कर सकते हैं। सुबह उठ के पहले मिसवाक कीजिए, सुनना समझते हुए तहारत कीजिए और उसके बाद ब्रश पेश कर लें। दिस इज़ वन सूरत। दूसरी क्या है कि मिसवाक करते हुए उसी के आगे थोड़ी सी पेस्ट लगा लें। नेचुरल ब्रश है, बिलीव मी, यानी पेस्ट यही यूज़ करें जो आप करते हैं, ब्रश की जगह पे मिसवाक लगा लें। दैट इज़ द थिंग। आप कहेंगे फिर वो तो प्योर और इम्प्योर चीज़ या सिंथेटिक चीज़ मिल गई, तो वो सिंथेटिक चीज़ भी तो चीज़ों से मिली है। तो होपफुली जो असल हुक्म है उसकी रूह को आप समझ गए कि मिसवाक करनी चाहिए। ठीक है जी, देखिए मिसवाक करना और इसको देखना भी एक बड़ी ट्रिक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो बल्कि फिर लोग मिसकॉन्सेप्शन में आते हैं। पानी में भीगी रखेंगे तो स्मेल पैदा हो जाएगी। मिसवाक को जब रखें तो उल्टा करके रखें, आपके पास कोई ऐसा होल्डर है जिसमें पानी निचुड़ जाता है। अच्छा जी, ये आप सबके हाथ में इस वीक की एक शीट आ रही है, इसका नाम है माई डेली सलाह एंड इबादा ट्रैकर। देखिए हम सब क्यों पढ़ रहे हैं ये, कुछ आदतें पुख्ता करनी है ना, और जब दुनिया में अपना हिसाब खुद बना लेंगे तो फिर आखिरत में आसान होगा। हासिबु कबलन तो हासिबु, आप कह लीजिए जस्ट लाइक फॉर रिलैक्सेशन, दिस शीट इज़ पार्ट ऑफ योर अमालनामा। फरिश्ते पता नहीं किस कागज़ पे बनाते हैं, किस रंग का उस पे लिखते हैं, हम सब की बन रही है ना। कुल्ला इंसानिन अल्जमनाहु तायरहु फी उनुके व नुखरिजु लहु यौमल क़ियामती किताब यल्काहु मंशूरा। कहाँ है यह आयत? सूरत बनी इसराइल 30। अब आप में इस पूरे कोर्स में क्या अपने दिमाग पे सिर्फ बोझ दें क्या हलाल था क्या हराम था, नजासत क्या, वो 0.2 रह गया और 6 रह गया, ये मकसद तो नहीं है ना। इल्म क्यों लेते हैं हम? अमल के लिए, हशियत के लिए, ठीक है ना। हिफ्ज़ क्यों करते हैं हम? ताकि बर मौका आए तो याद आ जाए। तो असल चीज़ अमल है। अब आपका मेरा काम क्या है कि हम अमल करें। आज चूंकि हमने इबादत का टॉपिक शुरू किया है और इंशाल्लाह ये चलता ही रहेगा, आप देखिए कि साउंड नॉलेज, सॉलिड चीज़, बगैर किसी लगी लिपटी के भी करें तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है ना, आज इसकी ज़रूरत है। लच्छेदार बातें और मिलाद और रबी अव्वल के प्रोग्राम और ये तो हमारी उम्मत का टेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक से करते हैं। आप इधर किसी ऐसे बंदे को बुलाएं जो कभी किसी क्लास में नहीं आया तो मेरा लिए वो सो चुका होता या सो गया होगा, अगर कोई होगा भी। तो ये चीज़ें आपके मेरे अपने अमल की हैं। ये शीट आप ज़रा खोलें, मैं आपको थोड़ा इसको सिखा दूँ कैसे करना है। सबसे ऊपर आयत लिखी हुई है, कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह अल अनाम 162 है। आपने इसके नीचे इसका तर्जुमा अपने प्यारे प्यारे हाथों से लिखना है। वो किसके हैं प्यारे हाथ? आपके हाथ हैं। लिखेंगे और जब लिखेंगे तो हर लफ्ज को लिखकर सोचना कि इसका मतलब क्या है। फिल्लाही लिल्लाही बिल्लाही, जब तक सब कुछ नहीं होता अल्लाह की तरफ बात ही नहीं बनती। यही है असल में ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह, यानी हमारी ज़िंदगी खुदा रुही कब होगी। फिर इसमें अगर आप इधर से लेफ्ट साइड से देखें, आपको एक बार दिख रहा है उसमें कुछ स्पेशल बोनस प्राइस हैं, मसलन फॉर मेकिंग फ्रेश वुदू फॉर ईच सलात आपको एक स्टार मिलेगा अगर आपने किया, फॉर यूजिंग मिसवाक एक स्टार है, फास्टिंग ऑन मंडे एंड थर्सडे 2 स्टार्स हैं, फॉर अटेंडिंग जुमा खुतबा 1 स्टार है, और पूरे वीक में अटेंडिंग क्लास ऑन टाइम 5 स्टार है। आज से इस चीज़ को जहन में रखें, 1 सेकंड भी अगर आप लेट आते हैं तो स्टार छोटे हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए कि आपने इन 7 दिनों की चेकलिस्ट में करना क्या है। नंबर 1, वेकिंग अप रूटीन, सुबह जागे कब। नंबर 1, कब जागे, जिस वक्त जागे वो सुन्नत के मुताबिक ठीक था, यानी नमाज का वक्त आगे पीछे तो नहीं हुआ। दूसरी बात, तहज्जुद कब पढ़ी और कौन सी सूरत पढ़ी, अपने लिए लिखिए, इससे फ़ायदा होगा आपको। फजर किस वक़्त पढ़ी, कौन सी सूरत फजर में पढ़ी। मॉर्निंग अस्कार पढ़े के नहीं पढ़े, ये वाइट हिस्से में चेक लगाएंगे आप। फिर इशराक की नमाज जिसको चाश्त भी कहा गया, किस वक़्त पढ़ी और कौन सी सूरत पढ़ी। जोहर किस वक्त पढ़ी, कौन सी सूरत पढ़ी। असर किस वक़्त पढ़ी, कौन सी पढ़ी। असर के बाद से लेकर एनी टाइम इवनिंग अस्कार पढ़ सकते हैं, पढ़े के नहीं पढ़े उसको चेक कीजिए। मगरिब कब पढ़ी, क्या सूरत पढ़ी। इशा कब पढ़ी, उसमें कौन सी सूरतें पढ़ी। और स्लीपिंग रूटीन, क्या सूरत सजदा और मुल्क और जो रात के सोने के अस्कार थे वो पढ़े के नहीं पढ़े। कोई नई चीज़ तो नहीं है ना इसमें, हम बचपन से ये सीखते आए ना। आपने इसका पूरा ट्रैकर पूरा वीक बना कर ये शीट सबमिट करानी है। अच्छी नहीं भी होगी ना तो अगले वीक की शीट अच्छी होगी। देखिए ये बन रही है आपकी मेरी, और इंशाल्लाह पिछली भी और अगले भी सेशंस की हम बनाते रहेंगे, और इससे फिर फ़ायदा क्या होगा कि हम सब बदल जाएंगे।